समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें।
आज सेना दिवस है। 15 जनवरी 1949 के बाद से ही भारतीय सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी, इसीलिए आज के दिन को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना ही थल सेना दिवस का मुख्य उद्देश्य है। हमारी सेना ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने ही मौकों पर अपने अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय पेश किया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा और उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सेना के जवान ही हैं जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। शत शत नमन है माँ भारती के ऐसे वीर सपूतों को। जय हिंद, जय हिंद की सेना।
Yes, happy Army Day to all our serving officers and of course and all the retired ones also. And Mukesh, an interesting piece of information for our listeners is that Jaipur is hosting the Army Day parade outside the cantonment for the first time, which is a historic moment for Rajasthan, as this is the first time in the history that this national event has moved into an entirely public civilian area. And the theme of Indian Army Day 2026 is Year of Networking and Data Centricity. This theme highlights the Indian Army's focus on digitalization and the use of modern technology to strengthen battlefield efficiency. So, Mukesh, time it is to start our news magazine program, Aaj Savere, for more interesting segments. So, listeners, join in, stay with us and enjoy. And Mukesh, let's start with some news headlines.
Bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही 4 अर्ध स्वायत्त देशों की संसदों के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर गहन चर्चा होगी। इसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है।
The voting for 29 municipal corporations will be held in Maharashtra today. Polling for 2,869 seats spread across 893 wards has begun and will conclude at 5:30 p.m. A total of 3.48 crore voters are eligible to decide the fate of 15,931 candidates, including 1,700 in Mumbai and 1,166 in Pune. Counting of votes will take place tomorrow. Elections to 29 municipal corporations are being held after a gap of over 6 years, with their terms having ended between 2020 and 2023.
महाराष्ट्र में आज मतदान के बीच मुंबई मेट्रो की एक्वालाइन मेट्रो 3 आज चुनाव अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए विशेष अतिरिक्त सेवाएं संचालित कर रही है। मतदान कर्मियों को समय पर अपने निर्धारित केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो 3 सेवाएं आज आधी रात तक जारी रहेंगी। विस्तारित सेवाएं चुनाव संबंधी कार्य पूरा करने के बाद देर से लौटने वाले कर्मचारियों के लिए भी सहायक होंगी।
The United States has announced that it will pause immigrant visa processing from 75 countries, including Pakistan and Bangladesh. The U.S. State Department said that migrants from these countries take welfare from the American people at unacceptable rates, and they often become public charges on the United States upon arrival. The freeze will remain active until the United States can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. The decision came after U.S. President Donald Trump said that no country can afford to take in millions of people and pay for their education and health care. Mr. Trump further said that his administration will not make any payments to sanctuary cities from the first of next month.
श्रोताओं, जैसे कि देश अभी त्योहारों की रौनक में डूबा हुआ ही है और इसी कड़ी में दुनिया भर में तमिल भाषी लोग आज पोंगल का त्योहार मना रहे हैं। पोंगल के इस दिन थाई महीने को नई शुरुआत की तरह मनाया जाता है। ये तमिल पंचांग में वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। पोंगल के इस थाई महीने को तमिल समाज में नए आरंभ के तौर पर मनाया जाता है। विवाह, नए व्यवसाय और अन्य आयोजनों के लिए ये महीना शुभ माना जाता है। आज पोंगल के पावन अवसर पर फसल कटाई के बाद बचे हुए अनाज को सूर्य देव को अर्पित किए जाने की परंपरा है। सुनते हैं आज के इस विशेष दिन पर हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
तमिल कहावत है थाई पिरंथाल वांछी पिरुक्कुम, अर्थात इस महीने का जन्म जीवन में नई राहें खोलता है। इसी आस्था और उल्लास के साथ तमिलनाडु में पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। पोंगल के अवसर पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव की ओर लौटते हैं। गांव की गलियां त्योहार के रंग में रंगी नजर आती हैं। घरों के सामने रंगोली सजाई जाती है, जिसके बीच गन्ने से बना छोटा सा मंडप और नया मिट्टी का मटका रखा जाता है। मिट्टी के मटके को हल्दी के पौधों से सजाया जाता है और उसमें चावल, दूध और गुड़ से पोंगल पकाया जाता है। जैसे ही पोंगल उफनता है, घर के लोग उल्लास के साथ पोंगलो पोंगल का जय घोष करते हैं। इसका अर्थ है समृद्धि ही समृद्धि। इस दिन सूर्य देव को नई फसल अर्पित की जाती है और भविष्य के लिए बीजों का एक हिस्सा भी सुरक्षित रखा जाता है। घरों में नाश्ते में पोंगल, वड़ा, चटनी और सांभर विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इस बीच त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी चेन्नई से राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3,000 रूपए और गन्ना भी प्रदान किया गया है। शहर के 20 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर लोक कलाकार ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा चेन्नई में आयोजित खाद्य महोत्सव ने भी पोंगल की खुशियों को और बढ़ा दिया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
Festivities continue, and in Uttar Pradesh, Makar Sankranti is being celebrated across the state. Despite severe cold wave and chilling conditions, devotees started taking dip at holy rivers on the occasion of Makar Sankranti. Our correspondent has filed this report.
Devotees along with saints have flocked to the ghats of holy rivers across the state since yesterday evening and taking bath on the occasion of Makar Sankranti once the auspicious timing started. This is also the second important bathing festival of about 1.5 month long Magh Mela being held on the banks of Sangam, the confluence of rivers Ganga, Yamuna and mythical Saraswati in Prayagraj. From early morning, lakhs of devotees are taking bath at Sangam and offering prayers. Magh Mela administration, railways and transport department of the state have made elaborate arrangements for the pilgrims. Today, several dedicated religious programs are being organized in Magh Mela area. Many ashrams and pandals will be organizing traditional community lunch of rice feast called Khichdi. Chief Minister Yogi Adityanath performed special puja and offered Khichdi Prasad at Gorakhnath Math at Gorakhpur, after which the famous Khichdi Mela started here. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
Kaise tyohar hain ye hamare? जिनसे भारत की विविधता में एकता की भावना विश्व मंच पर प्रस्तुत होती है। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की दुनिया की। विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 158 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए।
In men's cricket, New Zealand defeated host India by 7 wickets in second ODI match at the Niranjan Shah Stadium in Rajkot last night. The win helped Black Caps to level up the three-match series at 1-1. Daryl Mitchell, unbeaten 131-run knock, majorly contributed to New Zealand's chase of 285 runs in 47.3 overs. Daryl Mitchell was adjudged player of the match. The third and final match of the series will be played in Indore on Sunday.
और अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। दिल्ली में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए आयोजित 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि श्रृंखला की 26वीं प्रतियोगिता देश भर में नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों में फैले 88 विद्यालयों के बीच आयोजित की गई है। और राजधानी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 11 महीने में 319 आधुनिक और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचाने और दिल्ली को सशक्त रूप से स्वास्थ्य राजधानी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कल पंजाबी बाग में मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि स्प्रे सिस्टम सड़कों पर उड़ने वाली धूल और प्रदूषक कणों को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से हवा की गुणवत्ता बेहतर करने के प्रयास स्थानीय स्तर पर सकारात्मक असर दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध ढंग से ऐसे उपायों को और अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कल सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत DMRC सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से राजधानी में दूर दराज के क्षेत्रों तक टैक्सी सेवाएं शुरू करेगी। इसका उद्देश्य DMRC मेट्रो स्टेशनों से बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं के माध्यम से किफायती, विश्वसनीय और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना है। और श्रोताओं, बात करते हैं महाराष्ट्र के समाचारों का। मुंबई मेट्रो की महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय MUHS ने चिकित्सा छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने और प्रबंधित करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। ये कदम जालसाजी को रोकने और चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई प्रणाली के अंतर्गत डिग्री, मार्कशीट और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित शैक्षणिक रिकॉर्ड एक सुरक्षित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर संग्रहित किए जाएंगे, जिससे उनमें छेड़छाड़ करना असंभव हो जाएगा और उनकी पुष्टि करना आसान होगा। प्रत्येक छात्र को उनके शैक्षणिक इतिहास से जुड़ी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी। MUHS ने कहा कि ब्लॉकचेन पर डेटा दर्ज होने के बाद इसे बिना अनुमति के बदला या हटाया नहीं जा सकता। इससे प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। और अब बात कलकत्ता के समाचारों की। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नीपा वायरस से संक्रमित दोनों व्यक्तियों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। एहतियाती कदम उठाते हुए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए दो और लोगों को निगरानी के लिए बेलाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दो नर्स फिलहाल बारासात के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही हैं। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर है और एक नर्स कोमा में है। स्वास्थ्य विभाग ने 121 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जिन्हें उच्च जोखिम या कम जोखिम वाले संपर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार सुनते हैं सुभद्रा से।
Yes, Mukesh, starting with news from Chennai, the state government has provided equal employment opportunities to the transgender community by inducting 50 transgender persons into the Tamil Nadu Home Guards. This initiative follows an announcement made in the latest state budget. In the first phase, 50 transgender persons were selected, trained and appointed based on the recommendations of the Director General of Police and the Home Guards Commandant. Of the total inducted, 5 have been posted in Chennai, 15 in Tambaram, 10 in Avadi, 7 in Madurai, 7 in Coimbatore and 6 in Tiruchirappalli. We have another news from Chennai. The University of Madras, in partnership with Samsung, will train 5,000 students in artificial intelligence, AI, big data, the Internet of Things, IoT and coding. The university launched the training program titled Samsung Innovation Campus on the 9th of this month. Ekansh Raj, Senior Manager, Electronics Sector Skill Council of India, said that the courses have been designed by Samsung's Global Research and Development team. He added that these programs are offered in 63 countries and the certificates are awarded are globally recognized. Getting to Bengaluru now. Priyank Kharge, Karnataka's Minister for Information Technology and Biotechnology, has said that the state is in discussions with New Zealand to explore possibilities for collaboration in the fields of technology, education, research and emerging sectors. A delegation from New Zealand met the minister in Bengaluru yesterday. The minister briefed the visiting delegation on Karnataka's strong talent base, supported by an extensive network of higher education, and research institutions, making the state an attractive destination for collaboration between academia and industry. Hyderabad News Now. Makar Sankranti, the second day of the three-day harvest festival, is being celebrated across Telangana with religious fervour and traditional gaiety. People are observing the festival in accordance with regional customs and age-old traditions. Young girls decorated the courtyards of their homes with colourful rangoli and placed gobbimallu, idols made of cow dung, as part of the celebrations. Devotional songs rendered by Haridasulu, the offering of alms to them, reverence for Gangireddu, the decorated bulls, and the sharing of sweets, new clothes and gifts mark the festive spirit. Makar Sankranti marks the tradition of the sun from Capricorn to the Tropic of Cancer, a period considered significant for performing special offerings to ancestors. So those were the news from the metro cities.
Bilkul. श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब समा हो चला है आज महानगरों के मौसम के हाल को जानने का। इधर राजधानी दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। उधर मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और के मौसम का हाल सुना रही हैं सुभद्रा।
Yes, Chennai is expected to have a fog mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 22 degrees Celsius, maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 17 degrees Celsius, maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
Yes, we are going into the year 1559. Elizabeth the First was crowned Queen of England, beginning the Elizabethan era. And 1759, the world famous British Museum, harboring various archaeological holdings and antiquities, was opened to the public.
1784 में आज ही के दिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी।
1889, the Coca-Cola Company, then known as the Pemberton Medicine Company, is incorporated in Atlanta, USA. And 1892, this day, James Naismith published the official rules of basketball. And 1943, the Pentagon headquarters of the Department of Defense was completed after just 16 months of construction in Virginia, this day in 1943.
और अगर बात करें वर्ष 1965 की तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी आज ही के दिन इस वर्ष में हुई थी। और इसके 10 बरस बाद 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और 1988 में भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए थे। और वर्ष 1992 में बुल्गारिया ने बाल्कन देश मैसेडोनिया को भी आज ही के दिन मान्यता दी थी।
And 2001 this day, Wikipedia, a free wiki contents encyclopedia, goes online this day in this. Of course, I told you the year 2001. It was founded by Jimmy Wales and Larry Sanger.
श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं हम तपन सिन्हा की। तपन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक रहे। इन्होंने बंगाली फिल्मों का भी सफल निर्देशन किया। वर्ष 2006 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का पहला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी तपन सिन्हा को दिया गया। तपन सिन्हा की फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी सराही गई।
Yes, he was one of acclaimed filmmakers of parallel cinema movement of India.
बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें 19 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान हुए। तपन सिन्हा ने हमेशा कम बजट की फिल्में बनाई। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं पर काबुलीवाला तथा शुद्धित पाषाण उनकी चर्चित फिल्में हैं। नारायण गांगुली कथा सैनिक पर उन्होंने अंकुश फिल्म बनाई। शैलजानंद मुखर्जी की रचना कृष्णा पर उनकी फिल्म उपहार काफी लोकप्रिय रही। अमरीकी निर्देशकों विलियम वाइलर और जॉन फोर्ड के दीवाने तपन सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में एक तकनीशियन के तौर पर प्रवेश किया। उनके फिल्मी सफर में कुल 41 फिल्में दर्ज हैं, जिनमें 19 ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों से ये कुछ गीत।
And friends, 1893, we remember Ivan Novello, Welt, singer-songwriter, actor, manager, composer, playwright, best known for his lush, sentimental, romantic musicals. The Ivan Novello Awards for Songwriting, established in 1955 in his memory, awarded each year by the Ivers Academy to British songwriters and composers, as well as to outstanding international music writer. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. This quote of Martin Luther King Jr. is engraved at his memorial at Memorial Park in Washington, D.C. This prominent activist in the civil rights movement took birth this day in 1929. He was inspired by Mahatma Gandhi's teachings of nonviolence, strive towards achieving racial equality. And friends, he gave up his life doing that. On April 4, 1968, he was to lead a protest march in sympathy with striking garbage workers of that city. He fell for the assassins' bullets. Martin Luther King Jr. received the Nobel Peace Prize 1964 for his non-violent struggle for civil rights for the Afro-American population. Also, friends, the third Monday of January is celebrated as Martin Luther King Jr.'s Day all across the United States. Here's this beautiful hymn, We Shall Overcome. Here goes.
आज पुण्यतिथि है भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट, या यूं कहें तो फोटोग्राफर हुमायूं व्यारवाला की। जिस समय हुमायूं फोटोग्राफर थीं, उस समय कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्य कहलाता था। उस पर भी एक महिला का इस क्षेत्र में प्रवेश करना आश्चर्य की बात थी। उन्होंने वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा लिए गए फोटो भारत की स्वतंत्रता और अन्य ऐतिहासिक क्षणों की गवाह हैं। राष्ट्रपति भवन में लॉर्ड माउंटबेटन को सलामी लेते हुए भी उन्होंने तस्वीर खींची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी की गले मिलते हुए फोटो भी उन्हीं के द्वारा खींची गई है। इसके साथ ही महात्मा गांधी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी के निजी चिकित्सक सुशीला नायर की दुर्लभ तस्वीर भी उन्होंने ही खींची है। हुमायूं व्यारवाला द्वारा खींची गई तस्वीरों में युवा दलाई लामा भी शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके दो नाती और इंदिरा फिरोज गांधी की भी एक दुर्लभ तस्वीर हुमायूं व्यारवाला ने खींची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार को भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। उनके 104वें जन्मदिन पर वर्ष 2017 में गूगल ने अपने गूगल डूडल के रूप में उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट दिया। ये थी हुमायूं व्यारवाला। आज अगर हम बात करें तो युवा पीढ़ी में कैमरे का क्रेज जैसे कि बढ़ रहा है, तो उसकी नींव कि अगर पीछे देखा जाएगा तो हुमायूं व्यारवाला की शख्सियत अपने आप में बहुत बड़ी है।
And friends, today is the birth anniversary of Kashaba Jadhav or Kidi Jadhav, the famed wrestler who went to Summer Olympics of 1948 and 1952. And of course, he became the first athlete of independent India to win an Olympic bronze medal. He was affectionately called Deep Pocket Dynamo. And tributes to songwriter, guitarist, founder of the Southern rock band, Lynyrd Skynyrd. Ronnie Van Zandt took birth this day on January 15, 1948, Jacksonville, Florida. At the age of 29, he went away, along with several members of his band, in a plane crash. This is the signature tune of the band, song of the band, Sweet Home Alabama.
श्रोताओं, आज जयंती है प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की। सन 1919 में किचलू ने पंजाब में विरोधी राष्ट्र अधिनियम आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। रिहाई के बाद सैफुद्दीन किचलू को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया। वर्ष 1924 में सैफुद्दीन को कांग्रेस का महासचिव भी चुना गया। सन 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय उन्हें कांग्रेस की लाहौर समिति का सभापति बनाया गया। डॉक्टर किचलू विभाजन के सख्त खिलाफ थे। सैफुद्दीन किचलू का 9 अक्टूबर 1988 को दिल्ली में निधन हो गया। और बात करें अगर फुटबॉल जगत की, तो आज जयंती है प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर चुनी गोस्वामी की। उन्होंने वर्ष 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उस समय भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया, जिसने पहली बार एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1958 में चुनी गोस्वामी को वेटर्न्स स्पोर्ट्स क्लब का कलकत्ता द्वारा बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार भी दिया गया। 1954 में चुनी गोस्वामी ने अपना पहला बड़ा मैच मोहन बागान की ओर से खेला, जिसमें टीम का मुकाबला ईस्टर्न रेलवे से था और उस टीम ने 3-0 से मुकाबला अपने नाम किया था।
And friends, a young Irish lady singer, Dolores O'Riordan, came into the alternative rock scene with a mighty talent of singing and writing songs, fronted the famous band The Cranberries. Dolores, Irish musician and singer, played acoustic and electric guitar. This brilliant artist died young at the age of 46 on 15 January, that's this day in 2018. After her death, The Cranberries released the Grammy-nominated album In the End, featuring her final vocal recordings, and then disbanded.
और अब सुभद्रा जाते जाते श्रोताओं के साथ मना लेते हैं पंजाबी जबान के मशहूर गायक और अभिनेता सरदूल सिकंदर का जन्मदिन। सन 1980 के दशक में सरदूल ने अपनी पहली एल्बम रोडवेज दी लारी निकाली थी। सुनते हैं उनके कुछ ये गीत। श्रोताओं, आज सवेरे के आज इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।